ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम दिनचर्या और मनचर्या पर चिंतन करेंगे। प्यारे बाबा ने हम बच्चों के तीन कंबाइंड रूप बताए हैं। पहला कंबाइंड रूप है शरीर और आत्मा का, दूसरा कंबाइंड रूप है बाप और बच्चों का, यानी कि हम ब्राह्मण आत्माएं और बाप दादा भी कंबाइंड है, और तीसरा कंबाइंड रूप है भविष्य, हमारा लक्ष्य, चतुर्भुज रूप। इन तीनों में से आज हम शरीर और आत्मा का जो कंबाइंड रूप है उस पर चर्चा करेंगे। जब हम दिनचर्या की बात करते हैं तो दिनचर्या में शरीर और आत्मा कंबाइंड होकर वर्क करते हैं, और शरीर और आत्मा अनादिकाल से इकट्ठे हैं, लेकिन आत्मा रचयिता है और शरीर रचना है। तो इस स्मृति में जब हम कर्म करते हैं तो अथॉरिटी बन के, मालिक बन के कर्म करते हैं, और अगर इसके विपरीत स्मृति है, आत्मा देह के वशीभूत हो जाती है, देह के बंधन में आ जाती है, देह के गुलाम बन के कर्म करती है, तो सब कुछ उलट जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रवादियों ने आत्मा और परमात्मा को मिला दिया, दोनों को मिला के एक कर दिया, ऐसे ही आत्मा और शरीर को भी मिला के एक कर दिया, जिसके कारण आत्मा बंधन में आ गई, परतंत्र हो गई और उसकी सारी शक्तियां अक्षीण हो गई। लेकिन अब बाबा ने उस उल्टे ज्ञान को सीधा कर दिया, अर्थात आत्मा को मालिक बन के रहने की ट्रेनिंग दे दी। दिनचर्या तो सभी की होती है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबकी दिनचर्या है, संसार के करोड़ों मनुष्यों की भी दिनचर्या है, लेकिन बाबा ने हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या को ऐड कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले जब आप अपने रोज के कामों की लिस्ट बनाते हो तो साथ में ये भी लिस्ट बनाओ कि आज मुझे मन से क्या सोचना है, मन से क्या चिंतन करना है, किस कर्म को करते हुए किस स्मृति में रहना है। दिनचर्या और मनचर्या दोनों का बैलेंस हो, ऐसे नहीं कि शरीर तो बहुत बिजी है लेकिन मन खुला छूट गया, भाग गया। मन को भी बिजी करो, तन को भी बिजी करो, और इसके लिए बाबा ने कहा था कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने एक एक सेकंड का पोता मेल रखते हैं, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है। तो आप भी बहुत बड़े हो, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, तो आपकी दिनचर्या के एक एक पल का पोता मेल होना चाहिए कि इस समय मुझे मन को इस चिंतन में नियोजित करना है। तो मन भी बिजी रहेगा, बुद्धि भी बिजी रहेगी, तो दिनचर्या सुपीरियर बन जाएगी। जैसे कोई एक पांव पे चलता है तो चलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, दोनों पांव से चले तो चाल संतुलित रहती है, और लंबी दूरी तय कर सकता है आराम से। तो हम केवल शरीर चर्या की बात करते हैं, केवल शरीर के संबंध में सोचते हैं, शरीर को कार्य में नियोजित करते हैं, तो समझो केवल एक पांव से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में मन की चर्या को भी निश्चित किया तो समझो दोनों पांव से चल रही हैं, जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है। तो ऐसे हम भी तन और मन दोनों शक्तियों का सदुपयोग करके उड़ती कला की ओर जाते हैं। दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से होती है। साधारण व्यक्ति जब उठता है तो क्या सोचता है, मैं अमुक व्यक्ति हूं और अभी मैं उठ रहा हूं। ये दिनचर्या का पहला स्टेप होता है, सभी का होता है, सभी उठते हैं। लेकिन बाबा ने उसके साथ मन की चर्या क्या जोड़ दी, मन में क्या संकल्प करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और बाबा ने कहा जैसे आदि काल में परम धाम से आत्मा सतयुग में उतरेगी, उस सृष्टि का आदि काल, ऐसे ही दिन के आदि काल में आप भी परम धाम से अवतरित हुए हो, ब्रह्म धाम से मैं आत्मा अवतरित हुई हूं बाप से मिलन मनाने के लिए। तो इस श्रेष्ठ संकल्प से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो सारा दिन श्रेष्ठ बीतता है। और बाबा ने कहा जैसे बाप के तीन रूप हैं, बाप, टीचर और सतगुरु, तो आप बच्चों के भी तीन रूप हैं। बाप के साथ हम बच्चे हैं, टीचर के साथ हम स्टूडेंट हैं और सतगुरु के साथ हम उसके फॉलोवर हैं, सेवाधारी हैं, आज्ञाकारी हैं। तो जब दिनचर्या की शुरुआत हुई मॉर्निंग में तो सबसे पहला संबंध बाप और बच्चे का संबंध शुरू हुआ। उठते ही बाबा से हमने गुड मॉर्निंग की, उसके बाद हम बच्चे बन के बाबा के सामने बैठ गए, बाबा से रू रिहान चालू की, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आपका लाडला बच्चा हूँ, बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैंने आपको पहचान लिया, आप 5,000 साल के बाद मुझे मिले हो, बाबा मैं आप पर कुर्बान हूँ, आप जो कहेंगे मुझे वही करना है, आपके श्रीमत पर मुझे चलना है, जब से बाबा आप मिले हो मेरे जीवन में अतिंद्रिय सुख का झूला है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आनंदित हूँ, खुश हूँ, आपने मुझे अपने सर्व खजानों का मालिक बना दिया है, मैं बालक भी हूँ और मालिक भी हूँ। तो ये हमने रू रिहान चालू की। तो बाबा कहते हैं जब आप रू रिहान चालू करते हो तो बालक हो, लेकिन रू रिहान करते करते जब पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां आप में अवतरित हो गई, ज्ञान गुण खजाने आपने ग्रहण कर लिए, तो आप मालिक बन गए। अमृत वेले बालक सो मालिक, सर्व शक्तियों के मालिक। और शक्तियां भी केवल 8 नहीं जो चित्र में दिखाई, बाबा ने कहा ये तो सैंपल के रूप में दिखाई, लेकिन कितनी शक्तियां हैं। तभी अगर हम लिस्ट निकालें तो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली कितनी शक्तियां हैं, जैसे परिवर्तन शक्ति है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की शक्ति, इसको परिवर्तन शक्ति कहेंगे, मोल्ड होने की शक्ति, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लो, कभी नम्र बन जाओ झुक जाओ और कभी अपनी अथॉरिटी में स्थित हो जाओ, फिर एडजस्ट करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, भूलने की शक्ति, मन को मोड़ने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की शक्ति, मिलनसारिता, सबसे मिलजुल कर चलना, भाव स्वभाव मिलाकर चलना, ये भी एक शक्ति है। तो अमृत वेले बाबा से हमने सर्व शक्तियां प्राप्त की, और बाबा ने मुरली में कहा था कि साइंस में होता है बटन, बटन दबाते हैं तो चीज हाजिर हो जाती है। पंखे का बटन दबाया, ठंडक आ गई, एसी का बटन दबाया, सब कुछ कूल हो गया, पानी का गर्म का बटन दबाया, गर्म पानी आ गया। तो साइंस में बटन से काम होता है, और साइलेंस में संकल्प से काम होता है। साइलेंस में संकल्प की सिद्धि है। तो जब हम संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा बाप की सर्व शक्तियों की उत्तराधिकारी हूं, मैं योग्य पात्र हूं, वारिस हूं, बाबा का उत्तराधिकारी हूं, बाबा का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है अधिकार से, जब हम ये संकल्प करते हैं तो बाबा की शक्तियां सचमुच आत्मा में समानी चालू हो जाती है। आत्मा महसूस करती है कि बाप दादा की सर्व शक्तियां आत्मा पर उतर रही हैं, आत्मा में समाहित होती जा रही हैं, आत्मा उन शक्तियों को अपने में समा रही है, और शक्तियों को समाने के बाद जो शक्तिशाली रूप की अनुभूति होती है उसको भी आत्मा फील करती है। तो ये दिनचर्या का प्रारंभ है। उसके बाद क्या होता है, बाबा ने कहा उसके बाद आप अपने रथ का श्रृंगार करते हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था जब रथ का श्रृंगार करते हो तो साथ साथ आत्मा का भी श्रृंगार करो। रथ को ड्रेसअप करते हो तो आत्मा को भी परी या फरिश्ते की ड्रेस पहनाओ। बालों को सीधा करते हो तो अपने संस्कारों को भी सरल सीधा बनाओ। तो एक तरफ शरीर की चर्या है और उसके साथ साथ मन की चर्या भी है। मन भी बिजी है, दोनों को बिजी रखना है। और बाबा ने कहा था ये याद रखो कि ये शरीर मुझ चेतन मूर्ति का मंदिर है, और जो मूर्ति है वो बाप दादा की अति प्रिय है, जिसके गुणों की माला बाप दादा सिमरण करते हैं। तो जितनी मूर्ति महान होती है मंदिर की महिमा भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो आप मूर्ति भी हो और ट्रस्टी भी हो, खुद ही ट्रस्टी बनके अपने मंदिर को सजाते हो, क्योंकि सारा दिन फिर इस मंदिर के माध्यम से मूर्ति के लोग दर्शन करेंगे। तो अमृत वेले से हमने शरीर चर्या के साथ साथ मन को भी महान विचार, श्रीमत आधारित विचार, श्रेष्ठ विचार दिए, मन को भी खुराक दी। तो ऐसी शक्तिशाली खुराक जब मन खाएगा तो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा आपका स्टूडेंट लाइफ शुरू होता है। पहले सुबह सुबह बालक थे, उसके बाद अभी स्टूडेंट बन गए। तो स्टूडेंट रूप में मन को कौन से हाई थॉट देने हैं? रोज की मुरली सुनते हैं तो बाबा कहती हैं, बच्चे जब मुरली सुनते हो तो केवल सुनो नहीं, उसको समाओ। और समाने की विधि क्या है? मुरली में जो भी बात आती है, जैसे बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, तो उस समय आत्म अभिमानी बन करके बाबा के उस महावाक्य को संभालो तो स्वरूप बन जाएगा। बाबा कहते हैं आप सब बच्चे परम धाम से पाठ बजाने आए हो, तो परम धाम में आत्मा रूप का अनुभव करो और परम धाम से आत्मा रूप में उतरने का अनुभव करो, शरीर में अवतरित होने का अनुभव करो। तो वो महावाक्य सुनने के साथ साथ समा जाएगा, उसकी अनुभूति होगी कि हाँ मैं आत्मा अवतरित हो रही। बाबा सतयुग का वर्णन करते हैं, आप बच्चे भविष्य में देवता बनने वाले हो तो अपने उस देवताई रूप को बुद्धि में इमर्ज करो, बुद्धि के स्क्रीन पर देखो कि बाबा जिस देवता की बात कह रही हैं, मैं ऐसा देवता था और फिर से ऐसा देवता बनने वाला हूं। सुनने के साथ साथ दृश्य को इमर्ज करो। जैसे हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं, एक राजा था, तो राजा की पिक्चर बच्चे के दिमाग में आती है, उसका एक महल था तो वो कहानी याद हो जाती है। ऐसी जो भी कुछ सुने उसको साथ में समाए। और फिर बाबा ने कहा था ये मुरली है लाठी, तो लाठी से व्यक्ति कितनी लंबी यात्रा तय कर लेता है, बहुत सहयोग देती है लाठी। तो संगम युग की इस लंबी यात्रा में मुरली रूपी लाठी सदा हाथ में रखेंगे, सदा निर्विघ्न रहेंगे। मुरली ईश्वरीय महावाक्य हैं, बुद्धिवानों की बुद्धि मुरली के माध्यम से हमें मिलती है। बाबा कहते हैं सतयुग में आप इतने बुद्धिवान बन जाएंगे, आपको वजीर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बुद्धि बाबा कैसे देंगे? जो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, दुनिया में जितने भी बुद्धिवान लोग गाए गए हैं, माने गए हैं, उनको भी किसी न किसी पुरुषार्थ के फल से थोड़ी सी बुद्धि का वरदान मिला और वो इतने फेमस हो गए। लेकिन हमें तो बाबा ने अपनी संपूर्ण बुद्धि का वरदान दिया है, अर्थात बाबा के पास जो डिवाइन इंटेलेक्ट है वो मुरली के माध्यम से बाबा हमें देते हैं। तो मैं बुद्धिवानों के बुद्धि बाप दादा की उस परम बुद्धि को कैच कर रही हूँ। इस अनुभूति से हमको मुरली सुननी है। और बाबा ने ये भी कहा था उस समय नशा चढ़ाओ कि मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे ही पढ़ाने आते हैं, कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं। किसी का टीचर अगर अमेरिका से पढ़ाने आए तो उसको कितना नशा चढ़ता है, मेरा टीचर अमेरिका से आता है। तो बाबा ने कहा अमेरिका तो फिर भी इसी दुनिया में है, आपका टीचर तो कितनी दूर से आता है, कितना प्यार से पढ़ाता है और निखालस नॉलेज है, बिना मिलावट की। दुनिया में तो हर चीज मिलावट की है, चाहे खाने की चीज हो या कोई और जीवन निर्वाह की चीज हो, सब में मिलावट है। लेकिन ईश्वरीय महावाक्य निखालस, और निखालस चीज में बहुत शक्ति होती है। तो बाबा मुझे ऐसा निखालस ज्ञान दे रही हैं जो मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। पहले तो इस बुद्धि में ठिकरियां भरी थी, बाबा ज्ञान रतन डालते जा रही हैं और ठिकरियां निकलती जा रही। पहले इस बुद्धि में क्या भरा हुआ था? जैसे कि पॉल्यूटेड जल भरा हुआ था, लेकिन बाबा ज्ञान अमृत डाल रही हैं तो वो पॉल्यूटेड जो भी कुछ भरा हुआ था वो निकलता जा रहा है। और सुबह सुबह मैं आत्मा ज्ञान अमृत, ज्ञान जल پی رہی ہوں، بھرپور ہو رہی ہوں، تو اس بھاو سے ہم کو مرلی سننی ہے. شریر مرلی سننے کے لیے ستھر ہے، لیکن من بھی ایکٹیو ہے، الرٹ ہے، اونچے چنتن میں ہے، تو ڈبل فائدہ ہوگا. پھر بابا نے کہا اس کے بعد کرم یوگ کا پارٹ شروع ہوتا ہے، باپ، ٹیچر اور پھر ستگرو. تو کرم یوگ کے پارٹ میں بابا نے ساودھانی دی کہ ابھی کرم بندھن نہیں، لیکن ہم کرم سمبندھ میں ہیں. بھلے لوکک میں رہتے ہیں، لوکک پرورتی میں رہتے ہیں، لوکک کاریہ بھی کرتے ہیں، الوکک کاریہ بھی کرتے ہیں، ایشوریہ سیوا بھی کرتے ہیں، ویوہار بھی نبھاتے ہیں، لیکن من کو یہ سمرتی دینی ہے کہ اب میں مرجیوا ہوں اور میرے کرم بندھن سماپت ہو گئے ہیں. تو شریر نرواہ کرتے بھی آتم نرواہ کو بھولنا نہیں. شریر نرواہ اور آتم نرواہ دونوں کا بیلنس رکھنا ہے. شریر نرواہ کے ساتھ آتم نرواہ کریں گے تو لوکک کام بھی بنیں گے اور پارلوکک کمائی بھی ہوگی. بابا نے کہا دن بھر میں جب آپ کرم کرتے ہو تو ویرائٹی پرکار کی آتمائیں آپ کے سمپرک میں آتی ہیں، تو ان کو سمجھو ٹھیک سے اور اس کے بعد سیوا میں آؤ، تو سیوا بندھن نہیں بنے گی لیکن سیوا کمائی کا سادھن بنے گی. اور دن بھر کی دنچریا میں کوئی آتما اتی ویروھی ہو، پاپ آتما ہو، اپکاری ہو، بگولے جیسی ہو، لیکن اس آتما کے لیے بھی گھرنا نہیں، اس آتما کے لیے بھی نرادر نہیں، لیکن من کو وشو کلیانکاری سٹیج پر ستھت کرو. رحم اور ترس کی بھاونا رکھ کر کے پھر سیوا کے سمبندھ میں آؤ تو آپ کا بندھن نہیں بنے گا لیکن سیوا سے کھاتا جمع ہوگا. اور بابا نے کہا کہ جتنا ہی ہوپلیس کیس آپ ڈیل کریں گے تو آپ کو پرائز ملے گی، نامی گرامی وشو کلیانکاری کہے جائیں گے، پیس میکر کی پرائز ملے گی. اور بابا نے کہا یہ بھی ساودھانی رکھنی ہے کہ سیوا کرتے ہوئے اٹیچمنٹ میں نہیں آنا ہے. کئی بار کئی ڈاکٹر پیشنٹ کی اٹیچمنٹ میں آ جاتی ہیں، تو سیوا نیارا اور پیارا بن کے کرنا ہے، تیاگ اور تپسیا کے ساتھ سیوا کرنی ہے. سیوا کرتے میں تیاگ مورت، تپسوی مورت، نمت آتما ہوں. من کو یہ سمرتی دینی، شریر سے سیوا کرتے کرتے من کو یہ سمرتی دینی ہے، من کو اس سمرتی میں بجی کرنا ہے. اور پھر بابا نے کہا ایک ہے پرمارتھ اور ایک ہے ویوہار، تو ویوہار کو نبھاتے ہوئے بھی پرمارتھ اور ویوہار میں بیلنس رکھنا ہے. پرمارتھ ارتھات پرم کے ارتھ، پرم پتا پرماتما کے ارتھ، ایشوریہ سیوا کے ارتھ. تو کیول ویوہاری نہیں بننا ہے، پرمارتھی بھی بننا ہے. ویوہار مانا کرم، پرمارتھ مانا یوگ. اور دھن کماتے ہوئے بھی، دھن کی وردھی کرتے ہوئے بھی یاد کی ودھی کو نہیں بھولنا، نہیں تو ویوہار الجھا لیتا ہے. ویوہار میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پرمارتھ وسمرت ہو جاتا ہے. تو ویوہار بھی ضروری ہے لیکن ویوہار کے ساتھ پرمارتھ کو ملا کر کے چلنا ہے. ویوہار شریر کے لیے ہیں اور پرمارتھ آتما کے لیے ہیں. دونوں کا بیلنس رکھنا ہے. پھر بابا نے کہا کہ جب آپ دن چریا میں چلتے ہو تو دن چریا میں دو چیزیں آپ کے سمپرک میں آتی ہیں, ایک ویکتی اور دوسرا وستو. ان دونوں کے پرتی بھی کیا بھاو رکھنے ہیں وہ بھی بابا نے بتائی ہے. ویکتی کے پرتی آتمک بھاو اور وستوؤں کے پرتی اناسکت بھاو. اگر وستو کے پرتی آکرشن کا بھاو ہوگا تو وہ چمبک کی طرح سے کھینچے گی اور پھنسائے گی, اور اناسکت بھاو ہوگا تو وہ داسی بن کر کے چرنوں میں آئے گی. انیک پرکار کے سادھن, انیک پرکار کے درشی دنچریا کے دوران آتے ہیں. بابا نے کہا ان میں بھی پھنسنا نہیں, کیونکہ سادھنوں کے آدھار پر جیون نہیں ہے, سادھنا کے آدھار پر ہے. سادھن نمت ماتر ہے, سادھنا جیون کا آدھار ہے. سادھن سدھی کا آدھار نہیں ہے, لیکن سادھنا سے سدھی سوروپ بننا ہے. تو سادھن کتنے بھی ملے, اور ورتمان سمے تو سادھن بہت مل رہے ہیں, لیکن بابا نے کہا سادھنوں کے بیچ میں رہتے سادھنا کو بھولنا نہیں ہے, سادھنا کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, سادھنا کو مینٹین رکھتے ہوئے سادھنوں کا پریوگ کریں گے تو سکھ بھی ملے گا اور نیاری بھی رہیں گے, کمائی بھی جمع ہوگی. دن بھر کی دن چریا میں کرم اور یوگ کا بیلنس رکھنا ہے. بابا نے کہا تھا کہ کرم بھوگ کو جیتنے کا آدھار ہے کرم یوگ. بابا نے کہا ابھی آپ کو ایسی عادت پڑ جانی چاہیے, جیسے ضرورت پڑی تو ہم نے ڈریس پہنی, گاؤن پہنا, ایپرن پہنا, اور ضرورت نہیں ہے تو اس کو اتار دیا. تو یہ پریکٹس نرنتر ابھیاس میں لانی ہے. ابھی ابھی دیہ کو دھارن کر کے کرم کیا, اور کرم پورا ہوا تو دیہ روپی گاؤن کو اتار دیا. بابا نے کہا جب آپ یہ پریکٹس نرنتر کریں گے تو اس سے کرم بھوگ پر وجے پراپت کریں گے, اور اسی سے بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہو جائیں گی, دنچریا کے کام سرل ہو جائیں گے, جس کو کہتے ہیں کہ پہاڑ رائی بن گیا, رائی روئی بن گئی. اور بابا نے کہا تھا کہ جیسے نٹ ہوتے ہیں, کلاباز ہوتے ہیں, تو وہ اپنی کلابازی دکھاتے ہیں. ان کی کلابازی کو دیکھنے کے لیے لوگ سمے بھی لگاتے ہیں, دھن بھی لگاتے ہیں, ان کی واہ واہی بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں, انہیں دیکھنے آتے ہیں, ایک دو کے آگے ان کی چرچا کرتے ہیں. تو ان کلابازوں میں کیا کمالیت ہوتی ہے جو اتنی ان کی مہیما ہوتی ہے؟ تو بابا نے کہا ان کا اپنے شریر کے اوپر نینترن ہوتا ہے, شریر کو وہ جیسے چاہیں مولڈ کر لیتے ہیں, پتلے سے تار پہ چل لیتے ہیں, پھر چھلانگ لگا لیتے ہیں, تو شریر کو جیسے چاہے ویسے کئی جھکا لیتے ہیں. تو بابا نے کہا ان کی ہے شریر کی کلابازی, اور آپ بچوں کی ہے بدھی کی کلابازی. جیسے وہ शरीर से कला दिखाते हैं, शरीर पर उनका पूरा नियंत्रण है, ऐसी आपका अपनी बुद्धि पर पूरा नियंत्रण हो। बुद्धि को जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे और जिस स्थिति में टिकाना चाहे टिका सके। बाबा ने कहा था अगर आपने इस एक कला को सीख लिया तो बाकी सारी कलाएं अपने आप आ जाएंगी। ये मास्टर कला है, इस मास्टर कला के पीछे 16 कलाएं अपने आप आ जाएंगी। अर्थात बुद्धि को नियोजित करना सीख लिया तो 16 कला संपूर्ण बनना बहुत सरल हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि के ऊपर मास्टरी करनी है। दिन भर की दिनचर्या में शरीर से तो कर्म करने हैं, लेकिन बुद्धि को घड़ी घड़ी देखना है कि बुद्धि कहाँ गई, बुद्धि कौन सा दृश्य देख रही है, बुद्धि मेरे नियंत्रण में है, बुद्धि फिसल तो नहीं गई, बुद्धि चली तो नहीं गई, तीसरा नेत्र बंद तो नहीं हो गया। तो कर्म कैसा भी करें, क्योंकि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, सेवा सेवा होती है, छोटी और बड़ी व्यक्ति की सोच होती है। तुम कोई भी कर्म करें, साधारण कर्म करें, लेकिन सोच कितनी महान है, बुद्धि में दृश्य कैसे आ रही है, वो है सर्वश्रेष्ठ कलाबाजी। तो बाबा ने कहा दिनचर्या में इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। फिर जब हम बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं तो मन तो पीछे अपने आप ही आ जाता है। और बाबा ने कहा था कि कर्म करते हुए, कर्म और धर्म इन दोनों का भी संतुलन रहे। कई कर्म करते हैं लेकिन धर्म का अर्थ है धारणा, किसी न किसी सद्गुण की धारणा या शक्ति की धारणा, वो छूट जाती है। एक चीज पकड़ते हैं और एक चीज छूट जाती है। कर्म को पकड़ा लेकिन धर्म छूट गया, धारणा छूट गई। अर्थात कर्म में इतने बिजी हो गए कि संतुष्टता का गुण छूट गया, कर्म में इतनी बिजी हो गए कि शांति छूट गई, कर्म करते करते मन अशांत हो गया, कर्म में इतनी बिजी हो गए कि मीठी वाणी छूट गई, कर्म करते करते मन थोड़ा सा हलचल में आ गया, धैर्य छूट गया, कर्म करते करते अधीरता आ गई। तो कर्म तो किया, कर्म को तो पकड़ा, लेकिन कर्म की जो आत्मा थी धारणा वो छूट गई। तो अकेले कर्म के कितने नंबर मिलेंगे? दोनों का बैलेंस हो तो फुल नंबर मिलेंगे, एक चीज के तो आधे नंबर मिलेंगे। और कर्म तो दुनिया में सभी लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वो सतयुग में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ धर्म नहीं, केवल कर्म। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्म करने की यूनिक विधि सिखाई, कर्म को भी पकड़ो धर्म को भी पकड़ो, दोनों का बैलेंस रख करके चलो। बाबा ने कहा जब द्वापर युग आया तो लोगों ने कर्म और धर्म को अलग कर दिया, कर्म आत्मा अलग हो गए, धर्म आत्मा अलग हो गए। कर्म करने वालों ने कहा हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जो धर्म के मार्ग पर चले, रिलीजियस पर्सन थे, उन्होंने कहा हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे। तो वो कर्म सन्यासी बन गए। कर्म का सन्यास होता नहीं है, लेकिन उन्होंने समझा कि हम कर्म का सन्यास कर रहे हैं, हमको कर्म नहीं करना है। तो सृष्टि असंतुलित हो गई। अब बाबा संगम पर आकर के कर्म के साथ धर्म का मेल कर रही। हाथों से कर्म करो और मन को श्रेष्ठ धारणाओं में लगा के रखो, बुद्धि को श्रेष्ठ धारणाओं में लगा के रखो, दोनों साथ साथ चले, फिर डबल कमाई होगी, तन से भी कमाई होगी, मन से भी कमाई होगी, तो आप कितने धनवान बन जाएंगे, कमाई भी होगी, कमालियत भी होगी। और फिर बाबा ने कहा कि आपका प्रवृत्ति मार्ग है, तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, सब इकट्ठे रहते हैं, संन्यास नहीं करते हैं, संन्यास मार्ग अलग है, तो आप कर्म करते हुए धर्म को साथ रखो, प्रवृत्ति मार्ग में चलो। अगर आप कर्म करते हुए धर्म को संन्यास दे देते हो तो आपका भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो दोनों को साथ रखना है। और बाबा ने कहा था एक होता है कर्म योगी और एक होता है कर्म भोगी। तो सुनने में ही देखो कर्म योगी शब्द कितना सुंदर लगता है और कर्म भोगी शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता। तो कर्म योगी वो है जो इंद्रियों को अधीन करके इनसे कर्म करवाता है, मैं आत्मा करावनहार हूं और इंद्रियां करणहार हैं, इस स्मृति में रह करके कर्म करता है, वो है कर्म योगी। कर्म करते भी डिटैच है, परतंत्र नहीं, बंधन में नहीं है। और दूसरा है जो इंद्रियों के अधीनता में कर्म करता है, इंद्रियां उस पर हावी है, इंद्रियां उसको बंधक बनाए हुए हैं, आत्मा इंद्रियों की परतंत्र है, उसकी बंधन में है, बंधक है, उसको कहते हैं कर्म भोगी, क्योंकि कर्म के अच्छे और बुरे प्रभाव में वो आत्मा आती, अच्छे बुरे प्रभाव को भोगती, तो उसको कहा कर्म भोगी। तो दिनचर्या में हमें कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं बनना, इंद्रियों की गुलामी नहीं करनी, मालिक बन करके न्यारा होकर के दिनचर्या व्यतीत करनी। कोई भी कर्म करते ये स्मृति में रखना है कि इंद्रियां करणहार हैं और मैं आत्मा करावनहार हूं, मैं देह में निमित्त मात्र हूं, मेहमान। बाबा ने कहा था ये याद रखो कि ये दुनिया विदेशी है, विदेश है। स्वदेश तो परम धाम है। तो जैसे आजादी का आंदोलन चला था तो एक लहर चली थी कि विदेशी सामान को छूना नहीं, विदेशी सामान को यूज नहीं करना, स्वदेशी यूज करो। तो बाबा ने कहा इस दुनिया की हर चीज विदेशी है, तो फिर आप उस विदेशी चीज को बुद्धि से क्यों छूते हो, मन से उसके आकर्षण में क्यों आते हो, आप भी स्वदेशी चीजों को यूज करो। तो ये भाव कि मैं परम धाम स्वदेश से इस विदेशी दुनिया में आई हुई हूं, निमित्त मात्र आई हूं, देह में अवतरित हुई हूं और अपना कार्य पूरा करके मुझे वापस लौटना है। दिनचर्या में इसका अभ्यास कूट कूट के भरना है, ये सरल नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा, कहते हैं मेहनत का फल मीठा। अगर हम चाहें कि बिना मेहनत किए हमारी स्थिति ऐसे ही मजबूत बन जाए तो ऐसे तो होता नहीं है। एक हम पेड़ लगाते हैं उसकी भी मेहनत करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, तो बार बार स्मृति का पानी डालना पड़ता है, अटेंशन रूपी पहरेदार को जागरूक रखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि मेरा मन किधर गया, क्यों गया, बुद्धि कैसा दृश्य देख रही। तो मन और बुद्धि के ऊपर भी अटेंशन और कर्म के ऊपर भी अटेंशन, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। फिर बाबा ने कहा था कि जैसे आत्मा के बिना शरीर मुर्दा, तो जिस कर्म में आप स्मृति स्वरूप नहीं, तो उस कर्म में भी कोई जान नहीं, शक्तिशाली नहीं है वो कर्म, ऑर्डिनरी कर्म, क्योंकि उसमें याद रूपी आत्मा तो है ही नहीं। और जो कर्म याद में रह करके किए जाते हैं वो यादगार बनते हैं। कर्म कितना भी साधारण हो लेकिन वो चरित्र बन जाएगा, गायन योग्य बन जाएगा, वर्णन करने योग्य बन जाएगा, दूसरों के लिए प्रेरक बन जाएगा। याद में किए गए कर्म की इतनी महानता है, इतनी श्रेष्ठता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के साधारण से साधारण कर्मों को भी सभी बच्चे देखने के लिए लालायित रहते थे, भले साथ रहते थे तो भी सोचते थे कि देखें बाबा कैसे शयन करते हैं, बाबा कैसे चलते हैं, खड़े होके बाबा की एक एक एक्टिविटी देखते थे। उसका कारण यही था कि बाबा का हर कर्म याद स्वरूप था, यादमय था, तो आकर्षण का केंद्र था। तो याद में रह करके जो भी कर्म किए जाते हैं वो चुंबक की तरह से दूसरी आत्माओं को खींचते हैं। तो ये दिन भर की दिनचर्या जिसमें शरीर भी काम कर रहा है और मन भी व्यस्त है। उसके बाद बाबा ने कहा शयन अर्थात सोने की चर्या आती है। उसमें बाबा ने कहा था सोने की दुनिया में सो, बाप की याद की गोदी में सो, फरिश्तों के लोक में जाओ, स्वर्ग की दुनिया में जाओ। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कई बच्चे बाबा को शिकायत करते हैं कि बाबा मुझे सपने में डर लगता है, सांप दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे कई बच्चे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जब आप फरमान का पालन नहीं करते हैं तो अरमान रह जाते हैं। तो बाबा का फरमान क्या है? बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि सोने से पहले अपनी दिनचर्या के ऊपर एक दृष्टि डालो और मन की स्थिति ऐसी बनाओ जैसे निर्वाण स्थिति, वाणी से परे की स्थिति, निर्वाण धाम की स्थिति, जैसे आत्मा देह को छोड़ के निर्वाण धाम निवासी बन गई। उस गहन शांति में, डेड साइलेंस में, आवाज से परे जाके। और बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे बहुत गहरी नींद होती है तो उसमें व्यक्ति को दीन दुनिया का पता नहीं होता, सब कुछ भूल जाता है, ऐसी सोने से पहले सब कुछ विस्मृत हो जाए। दिन भर में क्या क्या हुआ था वो स्मृतियां योग अग्नि से जल जाए। 2009 की मुरली में बाबा ने बोला था एक बार कि अगर आप रात को अपना सारा हिसाब किताब कंप्लीट करके सोएंगे, बाबा को दिन भर की जो भी बातें हैं वो समर्पित कर देंगे, मन को खाली कर लेंगे, रोज का हिसाब किताब रोज खत्म कर देंगे, तो आपको धर्मराज के सामने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हिसाब किताब इकट्ठा ही नहीं होगा। एक दिन का एक कर्म बच गया, फिर दूसरे दिन का बच गया, हिसाब किताब इकट्ठा हो गया, तो फिर उस हिसाब किताब को चुकतू कराने के लिए तो धर्मराज के सामने जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम रोज ही अपना हिसाब किताब जला देते हैं, بچتا نہیں ہے کچھ بھی. روز کی کیے کرم روز خلاص ہو جاتی ہے. آتما پہ لیپ چھیپ لگتا نہیں, داغ دھبے لگتے نہیں, تو اکٹھا ہی نہیں ہوگا. تو یوگ اگنی سے دن بھر کی جو بھی باتیں سمرتی میں آ رہی ہیں ان کو جلاؤ, ختم کر دو. کیونکہ جو انتم ستھتی ہوتی ہے اٹھتے ہی وہی ستھتی من کی ہوتی ہے. جس ستھتی میں سوتے ہیں اٹھتے بھی اسی ستھتی میں ہیں. تو اگر من کو خالی کیا, ستھتی نیاری پیاری ہے, ڈیٹیچ ہے, پاسٹ کی کوئی بات کا چنتن نہیں ہے, من پر کوئی بوجھ نہیں ہے, کسی کی کہی سنی باتیں یاد نہیں ہیں, من ایک دم نرمل سوچ ہلکا لائٹ, تو جب صبح اٹھیں گے تو ایسی من کے ساتھ دن چریا شروع کریں گے تو دن چریا بھی کتنی لائٹ ہوگی, ارتھات اٹھتے ہی یوگ کتنا اچھا لگے گا. ہلکا من ہے تو اڑ کے پہنچ جائے گا بابا کے پاس, لیکن رات کو کوئی نہ کوئی بوجھ لے کے سوئے ہیں تو صبح بوجھ کے ساتھ اٹھیں گے تو اڑیں گے کیسے. تو بابا نے ودھی بتائی, سارے بوجھ بابا کو دے دو. جب بابا لینے کے لیے آئے ہیں, 63 جنم تو بوجھ اٹھائے, کوئی لینے والا نہیں تھا, لیکن ابھی تو بابا کہتے ہیں میرے بچی اور بوجھ اٹھائیں شوبھا ہی نہیں دیتا ہے. بابا نے کہا تھا جیسے بزنس مین ہوتے ہیں تو روز کا حساب کتاب روز ملاتے ہیں, کتنا گھاٹا ہوا کتنا منافع ہوا وہ سب دیکھتے ہیں. اگر نہ دیکھیں تو پروگرس نہیں کر پاتے بزنس میں, کتنا نقد آیا کتنا ادھار ہے, کون سا سامان ختم ہو گیا, کیا منگوانا ہے, تبھی تو پروگرس کرتی. تو آپ بھی بہت بڑے بزنس مین ہو, وہ تو ایک جنم کی کمائی کرتے ہیں, آپ تو 21 جنم کی کمائی کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی تو اپنا بزنس دن بھر کا دیکھنا ہے, سنبھالنا ہے, اس کی رپورٹ لینی. اور پھر بابا نے کہا تھا کہ جیسے 5000 برس کا چکر ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے کئی سارے چکر ہیں. 5000 سال کے چکر میں 5 یوگوں کا چکر ہے, پھر یوگوں کے چکر میں شتابدیوں کا چکر ہے, شتابدیوں میں پھر سالوں کا چکر ہے, سال کے بیچ میں مہینوں کا چکر ہے, مہینوں کے بیچ میں سپتاہ ہے, اور پھر ایک دن کا چکر ہے. تو اگر ہم نے ایک دن کے چکر کو پرفیکٹ بنا لیا تو کیا ہوگا, پورا کلپ ہمارا بہت اچھا بن جائے گا. ہمیں تو ایک ہی دن اچھا بنانا ہے, ایک ایک دن سے مل کر کے ہی پورا کلپ بنا ہے. ایک ایک دن چریا کے چکر سے پورے کلپ کی کہانی ہماری سرشٹ ہو جائے گی, مہان ہو جائے گی. لوکک دنیا میں جو پنڈت تانترک مانترک ہوتے ہیں, لوگ ان سے اپنے جیون کی سمسیاؤں کا سمادھان پوچھنے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں کلہ بہت ہے, کلیش ہے, شانتی نہیں ہے, دھن کا گھاٹا لگ رہا ہے, تو وہ لوگ تنتر منتر جاننے والے یا شاستر پڑھنے والے یا جیوتش ودیا جاننے والے, ہست ریکھا جاننے والے, وہ یہی کہتی ہیں کہ ان سب باتوں کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ رات کو برتن جھوٹے تو نہیں چھوڑ کے سوتے ہو, ایسے بولتے ہیں وہ. کیونکہ رات کو برتن جھوٹے چھوڑنے سے لکشمی نہیں آتی, برکت نہیں ہوتی, इस प्रकार की मान्यता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जितनी भी मान्यताएं बनी है ना, वो सब संगम युग से ही बनी है। संगम युग में सूक्ष्म है और भक्ति मार्ग में स्थूल है। तो संगम युग में बाबा ने हमें क्या बताया कि बुद्धि भी बर्तन है और बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। तो राग को बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ करो तो आपको भी बरकत मिलेगी, हर बात में बरकत मिलेगी। सुबह उठेंगे तो इस चमकते हुए बुद्धि रूपी बर्तन में बाबा वरदान डालेंगे। अगर बर्तन स्वच्छ ना हो तो डालने वाले का भी कुछ डालने को मन नहीं करता, लेकिन सोने की तरह से उजला होगा तो बाबा वरदानों से हमें मालामाल कर देंगे। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दिनचर्या में वृत्ति और वाणी इनका भी संतुलन रखो। होता क्या है कि जब आप वाणी यूज करते हो तो वृत्ति इतनी पावरफुल नहीं रहती, और जब वृत्ति को पावरफुल बना लेते हो तो बोल नहीं पाते हो। लेकिन इन दोनों का भी बैलेंस रखना है। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। बाबा ने कहा कि जैसे सिनेमा में एक्ट भी होती है और आवाज भी होती है, दोनों का संतुलन होता है। भले वो उसको इस तरह से जोड़ देते हैं ऐसे लगता है कि यही व्यक्ति बोल रहा है, कर्म भी कर रहा है और बोल भी रहा है, दोनों साथ साथ दिखाती। तो वाणी और वृत्ति दोनों पावरफुल हों, दोनों साथ साथ हों, क्योंकि वृत्ति वायुमंडल का आधार है। किसी बच्चे ने बाबा से, बच्चों से बाबा ने पूछा था कि तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं, तो किसी बच्चे ने उत्तर दिया कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे, ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने कहा ये तो साधारण पुरुषार्थ है, तो फिर तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ है जैसा मैं सोचूंगा वैसा वातावरण बनेगा, अर्थात जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल का आधार वृत्ति है, तो वृत्ति पर बहुत ध्यान देना है। वृत्ति अर्थात अंदर की सोच, अंदर के भाव, आंतरिक दृष्टि, आंतरिक दृष्टिकोण कैसा है उसको वृत्ति कहते हैं। तो अपने स्थान के वायुमंडल को स्ट्रांग बनाना, आकर्षक बनाना। बाबा ने कहा वाणी का प्रभाव इतना नहीं होता जितना वृत्ति का होता है, वृत्ति चुंबक की तरह आकर्षित करती है। आवाज से आप किसी को बात कहना चाहते हो उससे भी अधिक प्रभावशाली आपकी वृत्ति हो सकती है, अगर वो स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो। और वृत्ति को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए बाबा ने कहा एक बात हमेशा स्मृति में रखनी है, हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति और रहम की वृत्ति। दिनचर्या में कर्म करते हुए वृत्ति में रहम और कल्याण की भावना हो तो बहुत सुंदर संतुलन हो जाएगा। शरीर चर्या भी श्रेष्ठ होगी और मन चर्या भी श्रीमत प्रमाण बहुत श्रेष्ठ होगी। ओम शांति।